Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Balakpana chhut gaya, tumhare saath aaya nahi. Yauvanpana chhut gaya, tumhare saath aaya nahi. बुढ़ौती पना आ गई, बुढ़ौती में तुम बैठे हो अभी, लेकिन ये भी छूट जाएगा। कब तक बैठोगे? भरोसा है? कुछ तो बताओ। 10 वर्ष कह नहीं सकते, 20 वर्ष कह नहीं सकते, 50 वर्ष कल्पना ही छोड़ दो महाराज, है? ये तो असंभव। 10 तो फिर भी शायद संभव है, आशा कर लेंगे, हैं? 10 तो फिर भी आशा कह है, आशा कर सकते हैं कि शायद जी जाएं 10, अभी भी विश्वास है। 20 वर्ष बहुत ही कम भरोसा है, जी भी सकते हैं 20 वर्ष, 50 वर्ष है, 50 वर्ष अब आज के बाद 50 वर्ष है, कैसा लग रहा है आपको? प्रेमपुरी में आप आओगे 50 वर्ष के बाद? हैं? असंभव है। व्यावृत्त तुम, लेकिन तुम, ये बुढ़ौती चला जाएगा लेकिन तुम नहीं जाओगे, तुम रहोगे। और एक वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि तुम दूसरे जन्म में चले जाओगे, जन्मांतर में चले जाओगे। जन्मांतर में तुम्हें चले जाओगे तो फिर ये बुढ़ौती तो नहीं जाएगा, यही व्यावृत्ति है। तुम जहां जहां जाओ वहां वहां ये अवस्था यदि जाए तो तुम और तुम्हारी अवस्था की एकता सिद्ध होगी। लेकिन तुम जहां जाते हो तुम्हारी ये अवस्था वहां नहीं जाती, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तो तुम्हारी और तुम्हारी अवस्था के साथ दोस्ती खोटी है। हाँ, इस शरीर के इस बढ़ोती के साथ ये तुमने जो दोस्ती बना रखी है कि यही मेरा साथी है, यही मेरा मित्र है, यही मेरा बेड़ा पार करेगा, सुख दुख में यही साथ देगा, तो ये भरोसा नहीं कर लेना। ये ऐसा धोखेबाज है कि तुम चले जाओगे इसको छोड़कर ये यही रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, एक कदम नहीं जाएगा। हाँ, देहश्चितायाम, हाँ, देहश्चितायम, ज्यादा से ज्यादा शमशान में चिता तक पहुंच सकता है ये, उसके आगे तुम्हारे को साथ नहीं देने वाला ये। देहश्चितायम परमार्थ लोके मार्गे धर्मानुगोकच्छति जीवयेका। इसीलिए तुम्हारा असली मित्र तो शायद धर्म है, धर्म भी असली मित्र हम वेदांती लोग नहीं कहेंगे, वो भी बड़ा धोखाबाज है। यदि तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा तो स्वर्ग तक साथ देगा वो धर्म, क्योंकि उस धर्म मूर्ख को वहां बढ़िया भोगने को मिलेगा ना, इसलिए उसको पता है तुमको साथ देगा। हाँ, इसके पीछे लगेंगे तो स्वर्ग तक जाएगा, वहां अमृत पीने को मिलेगा, रंभा ऐश्वर्य आदि हैं, हैं उर्वशी आदि हैं, उनका आलिंगन मिलेगा। ये धर्म भी बड़ा बदमाश स्वार्थी है। और जब ये समाप्त हो जाएगा धर्म, तुम अकेले आना पड़ेगा, धर्म समाप्त हो गया तब फिर अकेले आओगे। यहां आते समय धर्म खाली खत्म हो गया, साथ नहीं देने वाला वो भी। तो ये सब व्यावृत्त है, अधर्म भी व्यावृत्त है, धर्म भी व्यावृत्त है, और धर्मजन्य लोक व्यावृत्त है, पापजन्य लोक व्यावृत्त है। तो बाल्यादिशु अपि जाग्रदादिशु, बाल्यादिशु व्यावृतासु, ये हट जाने पर भी छूट जाने पर भी तुम छूटे नहीं हो, तुम वही के वही हो, वही मैं हूं। ये भाव अहम अस्मि, ये भाव यथावत आपके साथ है। अहम अस्मि, वही बालक का जो व्यक्ति मैं हूं, वही मैं हूं अब। जाग्रदादिशु, अभी जागृत में ये शरीर तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम सपने में जाओगे तो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सपने में दूसरा ही सूक्ष्म शरीर होगा और वासनामय शरीर तुम्हें प्राप्त होगी, ये अन्नमय शरीर कर्मजन्य शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो यहीं छूट जाएगा। ये कहेगा तुमको हमारे साथ मित्रता करनी हो तो तुम फिर जगकर आ जाओ, नहीं तो तुम जाओ उधर से उधर, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तुम्हारे पीछे लगकर नहीं जाएगा। ये व्यावृतासु अनुवर्तमानम अहम, अवस्थासु व्यावृतासु अपी अहम अनुवर्तमान, अवस्थाएं छूटते जाते जाने पर भी मैं छूटता नहीं हूं, जागृत छूटने पर भी जागृत के साथ मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं, जागृत छूट जाता है, स्वप्न से मैं सुषुप्ति में जाता हूं, स्वप्न छूट जाता है, मैं छूटता नहीं हूं, मैं स्वप्न में जाता हूं और स्वप्न से मैं फिर जागृत में आता हूं तो स्वप्न छूट जाता है, मैं जागृत में आता हूं, जागृत से फिर स्वप्न में जाता हूं, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता हूं, जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं है, सुषुप्ति और स्वप्न जागृत में नहीं है, ये परस्पर व्यावृत है, परस्पर व्यावृत है, एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरा साथ नहीं रह सकते। ये अवस्थाएं ऐसी हैं कि एक अवस्था के साथ दूसरी अवस्था नहीं रह सकती, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं हर अवस्था में रह सकता हूं। जागृत में भी मैं था, जागृत से भी मैं मिलकर रहा था, स्वप्न में मैं था, स्वप्न से भी मैं मिलकर रहा था, सुषुप्ति में गया तो सुषुप्ति में भी मेरा विरोध नहीं किया, मैंने सुषुप्ति का विरोध नहीं किया, सुषुप्ति में भी मैं मिलकर रहा था, वही मैं जो जागृत में था, वही मैं स्वप्न होता हुआ सुषुप्ति में गया, वही मैं जो सुषुप्ति में था वही स्वप्न होता हुआ जागृत में आ गया, मैं वही हूं। अंतस्फुरंतम, हर अवस्था और हर वय में शरीर के अंदर स्फुरंतम, अहम अहम के रूप में स्फुरण होता रहता है, वो मैं हूं। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि, हर अवस्थाओं में, पहले किसी के बेटे थे और बेटे होकर रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप किसी के बाप हो गए और आप यही कहेंगे कि पहले मैं केवल बेटा था, वही मैं अब बाप भी हो गया। सर्वासु अवस्थासु, और जो अब बाप था, कुछ दिन पहले मैं बाप था, अब दादा भी हो गए, नाना भी हो गए, हो गए कि नहीं? पहले मैं जिसकी बेटी थी, केवल बेटी थी, उसके बाद मैं किसी की पत्नी हो गई, उसके बाद मैं किसी की मां हो गई, उसके बाद में किसी की नानी हो गई, दादी हो गई, लो जी शायद परदादी भी हो गई। कब तक होते रहोगे, क्या क्या होते रहोगे? तो जो कुछ होना है हो जाना, उससे तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है? कहते हैं काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है ना? काले रंग के बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है, कहते पता नहीं क्या है, तुम ऐसे काले रंग हो कि कोई रंग नहीं चढ़ने वाला, जहां भी जाओगे काले रंग, ऐसे निठाले रंग हो कि ऐसे निराले रंग हो, जागृत का रंग भी नहीं चढ़ेगा, स्वप्न का रंग भी नहीं चढ़ेगा, सुषुप्ति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बचपन का रंग भी नहीं चढ़ेगा, जवानी का रंग भी नहीं चढ़ेगा, बढ़ोती का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पति का रंग भी नहीं चढ़ेगा, पत्नी का रंग भी नहीं चढ़ेगा। सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता, सब हटते जाएंगे, छूटते जाएंगे। बाल्यादि स्वपी जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपी व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान मिहमत मंतास्फुरंतम सदा, सब व्यावृत्त होने पर भी एक चीज हमेशा अनुवृत्त रहता है, वह है अहम मैं स्फुरंतम सदा। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञात रहता हो, ज्ञात होता हुआ, अनुभव होता हुआ, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, ये अनुभव होता रहता है, वही मैं हूं। यही प्रतिविज्ञा है। ये प्रतिविज्ञा बाधित नहीं होती है, ये प्रतिविज्ञा नाश नहीं होती है। तुमको वही मैं हूं ये कराने वाला ही प्रतिविज्ञा है। व्यावृत्ता सुन वर्तमान महामित्यंत स्फुरंतम सदा स्वात्मानम प्रकटी करो अति भजताम। बोले महाराज, हर अवस्थाओं में बदलता हुआ भी मैं बदले बिना एक का एक, वही का वही, अहम अहम के रूप में रहता हूं, ये तो ठीक समझ में आ जाता है। लेकिन परमात्मा का तो किसी भी अनुभव में, किसी भी अवस्था में अनुभव नहीं हुआ है। जागृत में भी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैं हूं यह अनुभव तो होता है, परमात्मा है यह अनुभव नहीं हो रहा है। स्वप्न में भी मैं हूं यह अनुभव हो रहा है, परमात्मा है अनुभव नहीं हो रहा है। सुषुप्ति में भी मैं हूं यह अनुभव होता है, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, बचपन में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, जवानी में भी मैं हूं यह अनुभव हुआ था, और बुढ़ौती में भी मैं हूं यह अनुभव अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं परमात्मा हूं यह अनुभव नहीं हो रहा है। महाराज, कारण क्या है? तो यही मैं और परमात्मा के भेदक तत्व है। वो जो भेदक तत्व का भेद जब तक नहीं होगा, भेदन नहीं होगा, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा, इस शब्द मैंने प्रयोग कर दिया, ध्यान रख लेना, भेदक का भेदन है। भेदन माने नाश करना, भेदक माने अलग करने वाले का नाश करना, भेदक का भेदन जब तक नहीं होगा। कौन है इस भेदक का कारण, भेद करने वाला कारण कौन है? वेदांत ने उसी को अविद्या कह दिया है, वेदांत ने उसी को माया कह दिया है। पहले श्लोक में कहा था माया जवनिका, माया का पर्दा है, ये पर्दा ही भेदक है। कमरे में क्या करते हैं कि पार्टीशन करना होता है तो 2 इंच का छोटा सा एक प्लाईवुड लगा देते हैं, है ना? कितना स्पेस का है वो, कितना मोटा है वो प्लाईवुड, 2 इंच का। अब प्लाईवुड लगा दिया तो 2 कमरे हो गए, लेओ जी एक ही कमरा को। किसने किया 2 कमरे? वो कमरा अंदर का, वो कमरा बाहर का। अंदर और बाहर का विभाजन करने वाला कौन, भेदक कौन हुआ? हाँ, वही प्लाईवुड पार्टीशन जो किया था वही उसका भेदक हुआ। और वो जब तक वहां खड़ा रहेगा तब तक अंदर और बाहर, छोटा और बड़ा, ये होते रहेंगे। और उस भेदक का जब भेदन कर दोगे, उखाड़ के फेंक दोगे, तो न अंदर का रहेगा, न बाहर का रहेगा, न छोटा रहेगा, न बड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? एक, अंदर और बाहर का एक ही हो जाएगा, छोटा और बड़ा एक ही हो जाएगा। उस भेदक का नाम ही है माया, उस भेदक का नाम ही है अविद्या। उसी के चलते सारा भेद सिद्ध हो रहा है। जागृत भिन्न, स्वप्न भिन्न, सुषुप्ति भिन्न, ये भेदक करने वाला तत्व क्या है? वही अविद्या, वही माया है। उस भेदक का जब नाश होता है तो आपको न जागृत स्वप्न में भेद होगा, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भेद होगा, न सुषुप्ति जागृत में भेद होगा, न समाधि में भेद होगा। अपने स्वरूप में जागृत स्वप्न सुषुप्ति है नहीं। जैसे समुद्र के गहराई में तरंगे नहीं हैं, ऊपर की सतह में ही छोटे और बड़े तरंगे हैं, गहराई में एक भी तरंग नहीं है, तरंगा आभास भी नहीं है, गहराई में पानी गंभीर ठोस बैठा हुआ है, अविचल बैठा है, अविक्रिय बैठा है। पानी के गहराई में, पानी की तरंगों में स्पंद नहीं है, गति नहीं है, हलचल नहीं है। और ये सारे हलचल पानी के ऊपर के, समुद्र के ऊपर की सतह में है। और ये सारे भेदक उस माया के सतह में है। माया से गहराई में, अविद्या से गहराई में जब जाते हैं वहां ये भेद नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप में ये सारी अवस्थाएं नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वरूप में ये अवस्था होते तो मैं जहां जाता ये अवस्था वहीं जाते। हाँ, क्योंकि ये व्यावृत हो जाते हैं। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिसु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् भजताम्। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को उसी के सामने प्रकट करता है जो उसका भजन करता है। लेव जी, अब भजन कैसे करें महाराज है? भजन कैसे करें? मजीरा, ढोल, चिमटा है, ये सबके द्वारा भजन करें? हाँ, यहां भजन शब्द का अर्थ होता है भाग करना, विभाजन करना। भागो भक्ति भंजनम भक्ति, ये जो विभाजन करना है, अलग अलग करना है, उसी का नाम है भजन। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में भक्ति का स्वरूप व्याख्या किया है, अपने ही स्वरूप यथार्थ स्वरूप का जो अनुसंधान है उसी का नाम है भक्ति। पर स्वरूप का अनुसंधान का नाम भक्ति नहीं है। दूसरे के स्वरूप का अनुसंधान करके दूसरा कैसा है, दूसरा क्या है, दूसरा कैसा है, दूसरा नित्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा आनंद स्वरूप है, दूसरा ज्ञान स्वरूप है, दूसरा सुख स्वरूप है, दूसरा व्यापक है, दूसरा नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, अविचल है, ये भक्ति वेदांत को स्वीकार नहीं है। होगा वैष्णवों को ये भक्ति स्वीकार्य, वेदांत को ये स्वीकार्य नहीं है। परमात्मा सच्चिद आनंद अद्वितीय है, परमात्मा नित्य शाश्वत है, सुख स्वरूप है, करुणा वरुणालय है, दयालु है, कृपालु है, वेदांत को ये भक्ति मंजूर नहीं है। परमात्मा जैसा है वैसा ही मैं हूं, ये भक्ति मंजूर है वेदांत को। स्वस्वरूप अनुसंधान, दूसरे के बारे में अनुसंधान करके तुमको क्या मिलने वाला है, तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो, अपने बारे में भी अनुसंधान करो। तुम अपने बारे में कह रहे हो कि मैं मूर्ख खल कामी, और दूसरे के बारे में कह रहे हो कृपा करो भरता है, अपने बारे में कह रहे हो मैं मूर्ख खल कामी, और तुम पहले ही अपने स्वरूप ही मूर्ख खल कामी स्वीकार कर लिया है, तो ये मूर्ख खल कामी तुम्हारा नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक स्वरूप है? बोलो, मैं मूर्ख खल कामी, ये तुम्हारा अपने बारे में जो निश्चय है वो नित्य स्वरूप है कि आनुषंगिक है? आनुषंगिक शब्द का अर्थ समझ रहे हो ना? आनुषंगिक का मतलब होता है बाहर से किसी निमित्त से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ को आनुषंगिक कहते हैं। जैसे कोयले में काला पना, यह आनुषंगिक है कि उसका स्वरूप है? स्वरूप है, समझ रहे ना? और कोयले में यदि ऊपर से चूना लपेट दो, सफेद चूना का पेंट कर दो, कोयले के अंदर अंदर कोयला है और बाहर एशियन पेंट का व्हाइट पेंट कर दो, तो कैसा दिखेगा वो कोयला? सफेद दिखेगा। तो ये कोयले की सफेदी आनुषंगिक है कि स्वरूप है? आनुषंगिक है। किसी क्रिया के माध्यम से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संयोग से जो आता है उसको आनुषंगिक कहते हैं, किसी देश के संबंध से आता है आनुषंगिक कहते हैं, किसी वस्तु के संबंध से आता है, किसी काल के संबंध से आता है, वो सब आनुषंगिक है, स्वरूप नहीं है। अब इसी बात पर विचार करो, मैं मूर्ख खल कामी तुम कहे जा रहे हो अपने बारे में, ये तुम्हारा स्वरूप है कि आनुषंगिक है? आनुषंगिक है। इसका मतलब मैं मूर्ख खल कामी, ये तुम्हारा स्वरूप तो है ही नहीं। तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा अपना क्या स्वरूप है? बोलो, परमात्मा के बारे में तो कह रहे हो कि कृपा करो भरता है। अरे भाई, परमात्मा के बारे में जो निश्चय तुमने किया है वही निश्चय तुमने अपने बारे में किया है कि नहीं? अपने बारे में जो निश्चय वही परम, क्योंकि परमात्मा का भी जो स्वरूप है कृपा करो भरता, कृपा करना, करुणा वरुणालयपना, अहेतुक कृपा सिंधो, ये सब आनुषंगिक है। परमात्मा के भी ये सब आनुषंगिक है, जो बात तुम प्रार्थना में स्तुति में कहे जा रहे हो। नित्य सुख शांति सचिद आनंद अद्वितीय वो उसका स्वरूप है, वही स्वरूप तुम्हारा है। इसके अलावा उसका भी आनुषंगिक है, तुम्हारा भी आनुषंगिक है, तुम्हारा उसका भी वो आनुषंगिक व्यावृत्त होता है, तुम्हारा भी आनुषंगिक व्यावृत्त होता है। अनुवर्तन क्या है कि जो तुम्हारा स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। यही भक्ति वेदांत का सर्वोत्तम भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम व्यक्तिरित्य विधीयते। इस तरह आत्मानम भजताम, स्वात्मानम भजताम, उस परमात्मा के भजन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं, प्रकटी करोति, अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं का मतलब हुआ कि परमात्मा आपकी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अपनी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देने का तात्पर्य यह हुआ कि तुम्हारी अपनी यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देना। ये देख मैं ऐसा हूं, तू भी ऐसे ही है, मैं जैसा हूं तू भी वैसा ही है, यही परमात्मा के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का प्राकट्य करना है। किसके द्वारा, तो बोले यो मुद्रया भद्रया, ये परमात्मा ये कह रहे हैं, मैं जैसा हूं वैसे तू है, मेरे में और तेरे में रंच भी भेद नहीं है। और यदि अभी भेद की प्रतीति हो रही है तो वो भेद की प्रतीति आनुषंगिक है। तो ये त्रिगुणात्मी का जो गुण के प्रकृति के विषम अवस्था है, इनके साथ जुड़ा हुआ होने के कारण तेरे में इस समय जो भी भाव है, जन्मने वाला, बालकपना, यौवनपना, वार्धक्यपना, स्त्रीपना, पुरुषपना, रोगीपना, भोगीपना, ये सब के सब इसी के चलते हैं। ये त्रिगुणात्मक का जगत का विषम अवस्था, ये तीनों उंगली बराबर नहीं है, इसका मतलब यह कि जगत सृष्टि की अवस्था है। तीनों उंगली बराबर होता है तो प्रलय होता है। तीन गुण की साम्यावस्था को प्रलय बोलते हैं, तीन गुणों की जो विषम अवस्था है उसको सृष्टि बोलते हैं। जब गुण में विषमता आती है तब जगत उत्पन्न होता है, जब गुणों में साम्यता आती है तब प्रलय हो जाता है। इस समय हमारी उंगलियां तीन क्यों हैं, क्योंकि इस समय सृष्टि है, गुण की विषमता है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में परस्पर विषमता है, एक रूपता नहीं है, इसलिए जगत दिख रहा है। और यही तीन गुण विषम गुण वाले जगत के साथ, त्रिगुणात्मिका जगत के साथ तुम जुड़े हुए हो अपने आप को, इसीलिए इसके गुण तुम में आ गया, इसलिए आनुषंगिक हो गया है। तुम कह रहे हो कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, ये तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। देखो ये ब्रह्म है, असंग ब्रह्म है, इसका इन तीन गुणों से कोई संबंध नहीं है, असंग है, खड़ा करोगे तो भी उसके गुणों से जुड़ेगा नहीं, ऐसे तो असंग ही है। यही तो असंगो यम पुरुषः, देखो इनसे कोई संबंध नहीं। तो ये आत्मानं प्रगटी, ये ब्रह्म परमात्मा, उस भजताम भगवान के भजन करने वाले, तत्व चिंतन करने वाले के सामने परमात्मा क्या करते हैं, तू इससे हटकर मेरे से जुड़ जा, बस जीवात्मा, ये ब्रह्म, ये जीव, ये जगत। ये जीव जब तक जगत के साथ जुड़ा रहेगा तब तक जगत के धर्म आनुषंगिक इसको प्राप्त होते रहेंगे। जगत में क्या है, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मा है। जगत में चार चीजें, एक तो अनित्यता है, दूसरा असुचिता है, तीसरा दुख रूपता है, चौथा अनात्मता है, और पांचवा अनेक भेदता है, विषमता है। और इसी के साथ जुड़ता रहेगा तो वो सारी चीज तुझे तेरे में प्राप्त होता रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अब छोड़ दे, तू असंग हो जाए, इसके जुड़ जाए। इसमें सत है, चित है, आनंद है, अद्वितीय है, और चैतन्यपना है, ज्ञान रूपता। इसके साथ जुड़ते ही, जैसे अग्नि के साथ जुड़ते ही अग्नि का सारा धर्म लोहे को प्राप्त हो जाता है, इसी तरह ब्रह्म के साथ जुड़ते ही ब्रह्म के सारे भाव, नित्य भाव, जीवात्मा को भी नित्य प्राप्त हो जाता है। ये फिर आनुषंगिक नहीं होगा, ये स्वरूप होगा। इसके साथ जुड़ने पर आनुषंगिक है, इसके साथ जुड़ने पर स्वरूप प्राप्ति है, आनुषंगिक नहीं होगा। इस तरह भगवान शिव दक्षिणामूर्ति ज्ञान मूर्ति ये भद्रा मुद्रा के द्वारा उसके ही अंदर विद्यमान परमात्मा अपने आप को प्रकट करके, पहले जीवो हम कहता था, परमात्मा की कृपा से शिवो हम कहने लग जाएगा, पहले को हम कहता था, परमात्मा की कृपा से सो हम कहने लगेगा, इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि भाव जीव ब्रह्म की एकता तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा ये आत्मानम स्वात्मानम प्रकटी करोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम श्री दक्षिणा मूर्तये। सनत सुजात आदि सनत कुमारों को भगवान दक्षिणामूर्ति शिव ने सबसे पहले महावाक्यों का उपदेश देते समय में खुद अपने आप मौन होकर केवल इशारे से तत्व का उपदेश करके, महावाक्यों का उपदेश करके सनत कुमारों को कृतार्थ किया है और उनके सारे शंकाओं का निवारण करके उनको कृतार्थ करके गुरुमूर्ति उस अवस्था को कहते हैं दक्षिणामूर्ति अवस्था। ऐसे ज्ञानदाता गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, इसको भद्रा मुद्रा भी कहते हैं और इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तीन मुद्रा, तीन नाम है इस मुद्रा का, चिन्ह मुद्रा, भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, उसी का संकेत किया। और क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।